आपके साथ भी हो सकता है।
जनाब, ये लोग एक दूसरे को से वाकिफ हैं, पहचानते हैं एक दूसरे को?
हाँ, जानता हूँ। दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ाई भी हुई या नहीं?
जी।
जिंदगी में सबसे अहम चीज हम ख्याली है, हर चीज में, हत्ता के पढ़ाई न करने में, है ना?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हैं या संजीदा हैं। अगर मुस्कुराऊं तो कहीं तहजीब के खिलाफ न ये हो जाए मेरी हरकत।
मजाक कर रहे हैं बेटा, तुम बुरा ना मानो।
हाँ, मजाक कर रहा हूँ। मेरी बेटी भी मुझसे 2 साल से मजाक कर रही थी। हर रोज कहती थी कि यूनिवर्सिटी के क्लास में जा रही हूँ। मैंने सोचा ये कैसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हर रोज पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग चूंकि सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए सोचा शायद 2 ही साल में डॉक्टर बनना चाहती है।
फहाब,
मैं इनसे मजाक कर रहा हूँ, ये तो पहले ही से राजी हैं, हम तो यूं ही आ गए हैं चक्कर में। लेकिन इसे मालूम होना चाहिए कि जब ये मेरा दामाद हो जाएगा तो हर रोज कम से कम एक बार इसे चक्कर दिया करूंगा।
बहुत बड़ी बात है। मुबारक हो, हाजी साहब ने तो अपनी रजामंदी दे दी, मुबारक हो।
मैं जो टावर बना रहा हूँ उसमें 2 मंजिलें तजारती हैं, बाकी दूसरे किस्म के दफातर हैं। अभी से एक दफ्तर अलग रख लेता हूँ। दोनों एक ही मतलब में काम कर सकते हो ना? तुम में आपस में झगड़ा तो नहीं होगा?
किस लिहाज से?
जब तक तुम्हारे बाकी टर्म इस ओपन यूनिवर्सिटी में खत्म होंगे उस वक्त तक मतलब भी तैयार हो जाएगा। जगह भी बेहद मुनासिब है, बशर्ते कि खुद ग्राहकों को भगा न दो।
वाह वाह, क्या तोहफा है हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आपका बेहद ममनून हूँ।
और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
कोई खास बात नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम दुल्हन।
सलाम बेटी, कैसी हो?
ठीक, शुक्रिया।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं नहीं, मैं मौसीकी में भी दिलचस्पी रखता हूँ, गिटार और मुंह से बजाए जाने वाले साज।
अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इत्तेफाक से हमारी परवीन भी तस्वीरें बनाती है। ये जो तस्वीर देख रही है ना, उसी की बनाई हुई है।
वो जो कहते हैं कि मेरी बहू की हर उंगली से एक हुनर टपकता है, यही है।
सीधा किस मौसीकी ने इसे यूनिवर्सिटी से 1 साल पीछे कर दिया, हालांकि सरकारी यूनिवर्सिटी में कबूल हो चुका था।
देखें, अगर मुझे लाइसेंस मिल जाए तो मैं पेशेवराना तरीके से मौसीकी के काम को जारी रखना चाहता हूँ।
अच्छा, तो आप तो मुझे चक्कर दे रहे हो।
मैं ये जसारत नहीं कर सकता, बस सिर्फ ये कि मैं दांतों का डॉक्टर नहीं बनना चाहता। ये पढ़ाई भी सिर्फ बाबा जान की ख्वाहिश पर कर रहा हूँ। इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि परवीन से मेरी जान पहचान हो गई, लेकिन मौसीकी मेरी सारी जिंदगी है।
अब तक तुम्हारा कोई काम नशर भी हुआ है रेडियो या टीवी से?
लोग मेरी मौसीकी सुनते हैं बहुत ज्यादा, बस लाइसेंस नहीं है।
तहखाने वाले हो?
तहखाना तो नहीं, मेरा स्टूडियो है दूसरी मंजिल पर।
बहुत उम्दा, मौसीकी से बेहतर क्या हो सकता है? एक रोज आऊंगा तुम्हें सुनने।
यकीनन, आप कल ही तशरीफ ले आए, मैं खिदमत में हूँ।
नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आऊंगा तुम्हारे पास, वक्त बहुत है। और सीना बेटे, इस नेक काम के सिलसिले में ये कहना है कि तुम इत्मीनान रखो, मैं पूरी तरह से इस रिश्ते का हामी हूँ, लेकिन है ये कि मेरी एक पुरानी आदत है कि जब भी कोई अहम काम करना चाहता हूँ तो पहले इस्तखारा दिखवा लेता हूँ ताकि पूरी तरह इत्मीनान हो जाए।
हाजी साहब, नेक काम के लिए इस्तखारे की क्या ज़रूरत है?
आप बजा फरमाते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह कल मगरिब और इशा के दरमियान इस्तखारा दिखवा लूँगा, फिर जो जवाब आया उसके मुताबिक आपकी खिदमत में हूँगा इंशाअल्लाह। इन दोनों जवानों के लिए जो भी सलाह हो पेश आए
इंशाअल्लाह।
तायद भी शेष हुए, कामला भी हरकत है।
आपने इससे पहले कभी इस्तखारा दिखलाया था? क्या वाकई कभी अपनी जिंदगी में आपने इस्तखारा दिखलाया?
मैं नहीं कहूंगी कि इस्तखारा बुरा है। तुम खुद कल परसों फोन करके जो जी चाहे कह दो, मैं झूठ नहीं बोल सकती।
तुम ही कहो, मैं फोन करूंगा तो खुशामद करने लगेंगे।
बाबा जान, आपको मालूम है कि आपकी इस बात से इस्तखारा बुरा आया है? अगर इस जवान का खुदा पर से यकीन उठ गया तो ये आपकी गलती होगी।
इस्तखारा करूंगा उसका दूसरा मतलब नहीं है। जो कोई भी रिश्ता मांगने जाता है उसे ये बात पता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए कि कल बहुत काम है।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, शर्मिंदा हूँ, आधे घंटे की देर हो गई।
आप समझे कि मैं दो प्रोजेक्ट पर एक वक्त काम करने का क्यों मुखालिफ हूँ?
हाँ, भी ईमान से बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने दो प्रोजेक्टों पर एक साथ काम किया हो? चलिए आपको एक बात बताऊँ, चलिए अभी बताता हूँ, आइए आइए। इस प्रोजेक्ट को शुमार न कीजिएगा, ये हुसैनी की इमारत का प्रोजेक्ट है।
क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि उन सब लोगों को राजी कर लो जिन्हें उम्मीद है कि सब्जियां शुरू होने से पहले अपने अपार्टमेंट में आकर बैठ जाएंगे? ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि कतन देर होगी और वजह यह है कि तुम दो जगह पर मशगूल हो। क्या तुम्हारे ख्याल में इमाम हुसैन इस बात से राजी होंगे कि उनके नाम पर खिलाफ वर्जी की जाए?
आशूरा के दिन नए हुसैनिये में नजर खाएंगे तो एक राज बताऊंगा हाजी साहब। इस वक्त नहीं कहना चाहता, लेकिन उस दिन बताऊंगा हाजी साहब कि यही आधा घंटा इसी कम्प्लेक्स के लिए बरकत का बाइस बना है। आधे घंटे हुसैनी की वजह से देर हुई और पता नहीं हजारों दूसरी ताखीरें जो तबीयत तौर पर इस मनसूबे में पेश आती टाल दी, और आपका सारा काम बिल्कुल वक्त पर पूरा हो गया।
कुछ पता है तुम्हारे साथ बहस करने में क्या बुराई है? ऐसी चीजें आदमी के हवाले करते हो जिन्हें न ठुकराया जा सकता है न कबूल किया जा सकता है कि नहीं? मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि खुदा को बदनाम न करो। अरे बाबा, खुदा अगर तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हारी मेहनत की वजह से है, नजर व नियाज की वजह से नहीं है।
ये हजरत अबुल फजल की मन्नत है, इसके लिए भी इस्तदलाल की जरूरत है।
बाबा, हर बार जब हमारी बहस होती है तुम हजरत अबुल फजल को बीच में ले आते हो, यानी हम सब काफिर हैं, बस तुम्हारा ये अकीदा पक्का है। ठीक है ठीक है, ये बताओ वहाबजादे ने कितने पैसे इस इमारत में लगाए हैं?
150 अरब।
यानी इन तमाम वर्षों में और हर चीज का, और बाकी लोगों से एडवांस कितना मिला है?
50 अरब।
यानी उम्र के 50 वर्षों की आधी सदी की साख के हुए 200 मिलियन, और उन्हें इस इमारत की बुनियाद ने झोंक दिया। बहुत अच्छा, अब बताओ एक दिन के काम के नाते कितना बनता है? तुम तो इंजीनियर हो।
बहुत ज्यादा
नहीं, तुम ही बताओ, रोज का 10 मिलियन होगा?
यकीनन होगा।
बहुत अच्छा, रोजाना 10 मिलियन का घाटा। वो जो वहाबजादे का हिस्सा है उसे तो मैंने बख्श दिया, और जो दूसरों का हिस्सा है, और तुम जो यहाँ के इंजीनियर और सब कामों के कर्ता धरता हो, चल दिया किसी और मंसूबे पर। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हुसैनिया है या कुछ और?
मैं मौसीकी छोड़ने पर तैयार हूँ।
ये तुमसे कौन चाहता है?
आपकी बेटी ने पहले मुझे बता दिया था कि आपको मौसीकी और दूसरे आर्ट पसंद नहीं है। मुझसे कहा था कि आपको इस बारे में कुछ न बताऊं। मैं जानता हूं, मैं सच्चाई की मार खा रहा हूं।
अरे बेटा, तुम किसी चीज़ की मार नहीं खा रहे हो। मैं सिर्फ एक इस्तखारा दिखलाना चाहता हूं और बस। तुम इस मसले को इतना उलझा क्यों रहे हो? मैं अगर तुम्हें इनकार करना चाहता तो तुम्हारे दबाव में तो न था। सच्ची बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी यही सदाकत अच्छी लगी।
हालांकि म्यूजिक मेरी सारी जिंदगी है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसे छोड़ने पर तैयार हूँ। यह आपके लिए अहम नहीं है
बेटा। खुद को हकीर न समझो। हर शख्स दिल से चाहेगा कि अपनी बेटी तुम्हें दे दे, बशर्ते कि तुम जो भी हो वही रहो। मैं तुम्हें उसी शक्ल में चाहता हूँ जिस शक्ल में तुम हो, किसी दूसरे सीना को नहीं।
आप मजाक तो नहीं कर रहे?
इसमें मजाक की क्या बात है?
नोश फरमाइए।
जरा ठहरो, एक ईमेल फरशीद को भेजो और कहो कि अपनी बहन के लिए दावतनामा भेजे। एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी का भी इंतखाब कर ले। एक गैर मुल्की करेंसी का अकाउंट भी खोलकर नंबर तुम्हें भेज दे।
खैरियत तो है?
आज सीना मेरे प्रोजेक्ट पर आया था। कह रहा था कि 12 साल के बाद अचानक एक शब में उसने फैसला कर लिया कि मौसीकी तर्क कर देगा।
अच्छा, बहुत अच्छा हुआ।
इस लड़के के मिजाज में ठहराव नहीं है, ये खतरनाक है। दो सूरतें हैं, या तो शादी के साल 6 महीने के बाद जब जरा होश में आएगा तो अपने साजो सामान की तरफ पलट जाएगा, या हर रोज परवीन का दिमाग खाएगा कि मैं तो बेथोवेन होना चाहता था, तुमने होने नहीं दिया। दोनों सूरतें खतरनाक हैं, इसलिए मैंने सोचा कि परवीन अपने भाई के पास बर्लिन चली जाए, फिर किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर लेगी और कुछ दिनों के बाद इन दोनों के सरों का सौदा भी खत्म हो जाएगा।
मैं क्यों सीना से शादी ना करूं? एक फेहरिस्त दरवाजे पर टांग दीजिए जिसमें लिखा हो कि सिर्फ मंदरजा ज़ैल पेशे वाले हजरात घंटी बजाएं, लोग पहले मेरे बाबा की फेहरिस्त पढ़ें, तब रिश्ता लेकर आएं।
बेटा, तुम अहले मौसीकी को जानती हो, तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी किस ढर्रे पर चलती है।
शायद ये लोग एक बीवी को घर पर रखते और 100 को इधर उधर, है ना?
नहीं बेटा, सब ऐसे नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर अहले हुनर की आवाज दूर के ढोल की मानिंद है, जो दूर से अच्छी लगती है लेकिन काबिल तहमुल नहीं है। अपनी दुनिया में खूब दमकते हैं लेकिन हकायक से दूर रहते हैं। आदमी को चाहिए कि सिर्फ उनकी सीटी खरीद ले, सुने और सिर्फ ये सोचे कि वाह वाह, क्या उम्दा इंसान है। हैफ, अफसोस की बातें सिर्फ ख्यालों में हो सकती हैं। बेटा, अब तुम दुनिया में घूमने फिरने जा रही हो तो आप समझ लोगे कि मैं सच कह रहा था। अगर यूं ही काम तूल पकड़ता रहा तो सर्दियों के शुरू तक इस हाल का इस्तेदाक करना मुमकिन नहीं।
इस 1 महीने की ताखिर की वजह से बस अपने हदफ के करीब पहुंच सके हैं कि अपने ग्राहकों को शायद वक्त पर अलॉट कर सकें।
शर्त यह है कि अब मजीद कोई ताखिर न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट के आखिर तक सीमेंट, लोहा या ग्राहकों की किस्तों के मिलने में और देर न होगी।
सब हो जाएगा, मैंने हजरत अबुल फजल से तवसल किया, इंशाल्लाह सीमेंट, लोहा और पैसा सब वक्त पर आ जाएगा।
खुदा और पैगंबर और इमाम सब अपनी जगह पर ठीक, लेकिन मैं अपनी अक्ल से आगे बढ़ता हूँ इंजीनियर साहब।
हाजी साहब, हर चीज अक्ल के मुताबिक नहीं बढ़ता।
तो तुम मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर आमादा कर रहे हो कि वक्त पर काम नहीं हो पाएगा।
अगर मसाला वक्त पर पहुँच गया तो हो जाएगा। हाजी, इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि इधर उधर के कामों का मालिक कोई है। अब देखिए ना, सीमेंट आने में 2 हफ्ते की देर हो गई लेकिन 1 दिन के लिए भी काम बंद नहीं हुआ। बस पता नहीं कैसे इंतजाम हो जाता है।
क्या कहने तुम्हारे, कहां कहां से तुम पर वही उतरती है। इसीलिए आप की बिल्कुल छुट्टी कर दी है क्या? इतना
इस गर्मी बाजार में मेरी निगाहें आसमान की तरफ न हो और सिर्फ अपनी अक्ल पर तकिया करूं तो क्या खुद आप मुझे अकिल कहेंगे? ये लीजिए, देखा आपने हजरत अबुल फजल के तवस्सुल में आसान कर दी, ये सीमेंट डिलीवरी का ऑर्डर है, बाकी काम भी हो जाएंगे।
तुम फिर अपने ही कहे जाते हो। अरे भाई, ये डिलीवरी ऑर्डर मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने दोस्त से बदला है।
अरे साहब, क्या फर्क पड़ता है, आप सिर्फ खुदा से तवस्सुल करें, अजबाब खुदा मुहैया करता है। अरे साहब, खुदा आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। हुसैनी अबुल फजल का डिलीवरी ऑर्डर 2 महीने पहले बन गया था, मगर अभी तक आज और कल पर टाल रहे हैं।
अक्ल वाकई अच्छी चीज है कि वक्त पर काम आए। वो प्लान जो तुमने बनाया है
जी,
मेरे ख्याल में उसे टेलीविजन के बच्चों के प्रोग्राम के लिए भेज दो कि बच्चों की मुसव्वरी के बदले नशर कर दें।
हाजी साहब, चलिए मान गए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये सीमेंट जो इस तरह आपको मिल सकी है, ये उसी तवस्सुल के बाइस है, ये तरकीब खुदा ने आपके जहन में डाली है।
तुम्हारे यही पाक और नेक ख्यालात हैं कि मेरा दिल चाहता है कि तुम पर कुर्बान हो जाऊं। अरे अकलमंद इंसान, तुमने सीमेंट के बारे में तो तवस्सुल कर लिया, लेकिन मेरी बेटी परवीन का मामला, अगर सिर्फ तवस्सुल किया होता और उसे बाहर न भेजा होता तो आज तो नवासा मेरी गोद में होता और आंखें आसमान की तरफ करके कहता, खुदाया मेरे इस नवासे के लिए कुछ कर। हाँ, क्या हुआ, अब बोलते क्यों नहीं?
वल्लाह क्या कहूँ।
वाह, क्या मौके से आया है, बाहर से परवीन का फोन है। ओहो सलाम, कैसे हो बेटे, तुम खुद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा और होने वाला बच्चा, मैं समझा कि तुम्हारी बहन है, यूनिवर्सिटी जाने लगी। क्या ईरान वापस आ गई, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, या खो तो नहीं गई? 4 महीनों में एक अजनबी मुल्क में कोई कितने रास्ते याद कर सकता है? पुलिस में गए? हाँ परवीन, क्या तुम्हारी बीवी से लड़ाई हुई है? इंसानों की तरह क्यों बात नहीं करते? हेलो हेलो, ये तुम हो फताही? पता नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
तुम कल रात बिल्कुल नहीं सोए वहां।
काश कि मैं जानता कि वो कहां है।
कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? रोज खबरें आ रही हैं मशरिकी यूरोप पर रूस के यरगमाली गिरोहों की, अगर ऐसा हुआ तो वहां बखुदा मैं
ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानत हो शैतान पर। हेलो, रबी साहब का घर है
जी, फरमाइए।
सीना साहब तशरीफ रखते हैं
आप?
मैं वहाब ज़ादा हूँ।
कैसे हैं वहाब ज़ादा साहब?
खुदा का शुक्र है। सीना है?
नहीं।
कहाँ है? उसका मोबाइल बंद है, मुझे एक जरूरी काम है।
ईरान में नहीं है
क्या? उसने मिलिट्री सर्विस कर ली थी?
मुल्क से बाहर का एक दौरा है, यूनिवर्सिटी के जमानत पर गया है, एक हफ्ते में सेमिनार खत्म होने पर वापस लौट आएगा।
कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है?
नहीं, चंद बार उसने खुद ही फोन किया था।
ये बताया कि कहाँ है?
हर दफा एक नई जगह पर था, कब्रिस तुर्की।
ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारी अक्ल बिल्कुल काम करना छोड़ दे? पता ही, जब तुम्हारा हाथ किसी चीज को भी छू न सकता हो, جب تمہاری عقل ایک بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح صرف اپنے چاروں طرف گھوم رہی ہو، جب ایک بے حیثیت اور بیکار گمشدہ شخص کی طرح ایک بت کی مانند تمہارے گھر میں بے آبروئی کا مظہر بنا بیٹھا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی راستہ تمہیں نظر آتا ہے؟
واللہ آپ کے لیے نہیں، میں آپ کی جگہ ہوتا تو حضرت ابو الفضل کی نظر مان لیتا، لیکن آپ کے لیے نہیں کہوں گا کہ کہیں دوبارہ مکر نہ جائیں اور پھر ٹھوکر کھائیں۔ یہ جو کچھ میرا کام ہو رہا ہے یہ سب توسل اور نظر و نیاز کی وجہ سے ہی ہے۔
میں نے تمہیں اپنے والد کے بارے میں بتایا ہے، اگر انہیں ڈھونڈتے تو کسی مسجد، حسینیہ یا درویشوں کے تکیے میں۔ میری ماں ہوٹل میں کام کرتی تھی، بابا مرحوم کہتے تھے کہ روزی آسمان میں ہے، اگر قسمت ہوگی تو آئے گی، ہمیں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا۔ خدا ان دونوں کی مغفرت کرے۔ فتح ہی، کبھی کبھی مجھے تمہارے ایمان پر حسرت ہوتی ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ تمہارے فائدے میں ہے یا نہیں، لیکن میں تمہارے اس جوش و جذبے پر رشک کرتا ہوں۔
حاجی صاحب، کوئی چیز کسی دوسری چیز کی جگہ نہیں لیتی، نہ دعا ہاتھ اور عقل کو روکتی ہے، نہ عقل اور ہاتھ دعا کی جگہ لیتے۔
مان لو کہ اس بات کو سمجھ لینا اتنا آسان نہیں، اگر خود کو دھوکہ نہ دینا چاہو تو اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ تم تو نظر و نیاز کو مانتے ہو، میری طرف سے نظر مان لو۔
حاجی صاحب، یہ تو جو بھی چاہے کر سکتا ہے، نہ راستہ بند ہے نہ رسمان ہونی ہے۔
حسینیہ ابو الفضل کے خرچ کا پانچواں حصہ میرے ذمے ہے، بشرطے کہ پروین کی کوئی خبر مل جائے۔
دیر سے آئے،
سیمنٹ کے لیے گیا تھا، پہنچنے والی ہے،
دیکھ لیں گے۔ فتح ہی، علی بازدار والی رضا عدالت کے وہ چیک کتنے کے تھے جو نقد نہ کرائے جا سکے؟
ٹوٹل 50۔
حساب سے 5 ملین نکال کر لے جاؤ۔
کتنے نہیں ہیں؟
کتنے ہیں؟ کیا سب سیمنٹ میں خرچ ہو گئے؟
तुम्हारे पास 1-2 मिलियन होंगे कि नकद दे सको?
क्यों, क्यों बात हो गई?
परवीन के लिए चाहिए।
हाजी साहब इतनी जल्दी नजर पूरी हो गई?
उसी रात को जब घर गया था तो उसका खत आ चुका था।
अल्लाह अकबर, क्या कहने हजरत अब्बास के, खुदा के सामने कितनी आबरू है इनकी।
मैं मन्नत मानता या ना मानता, इस खत को तो आना ही था।
हाजी साहब अब जबकि खुदा ने आपकी दुआ कबूल कर लिया तो पीछे हट रहे हैं?
इंजीनियर साहब ये जवाब मैंने नहीं मांगा था, ये मेरी नजर का जवाब न था कि उसकी तस्वीर उस नाकारा लड़के के साथ आए। इस आखिरी उम्र में मैं अब बाप नहीं बैंक का क्लर्क हूं। मुझे खत भेजा गया है कि हम इस्तांबुल में शादी कर रहे हैं। अगर खत भेजा है तो इसलिए कि पैसे नहीं हैं, इसलिए कुछ भेज दिए जाएं।
या कमर बनी हाशिम,
मेरी नजर का ये जवाब नहीं था इंजीनियर। तुम अब भी यही कहोगे कि यही मेरी नजर का जवाब था?
टेलीफोन नहीं उठा रही है। सुबह को उससे बात की थी, ठीक थी, कह रही थी कि फिलहाल सीना के साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। रेस्टोरेंट के मालिक एक ईरानी खातून है, काफी खुश थी। कह रही थी कि रातों को ऐसे फोन ना करूं क्योंकि उस वक्त बहुत मशगूल होती है।
वो क्यों?
कह रही थी कि सीना रेस्टोरेंट में साज बजाता है और वो खाने के ऑर्डर लेती है।
हाजी साहब सीमेंट के ट्रक आने वाले हैं। हाजी साहब।
हाँ कहो।
मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, क्या हो सकता है कि नजर का एक हिस्सा अदा कर दे?
किन पैसों से?
पैसों की बात कौन कर रहा है, वहाँ सीमेंट की कमी हो गई है, अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है, एक ट्रक के आधे हिस्से से हमारी मुश्किल हल हो जाएगी।
तुम्हें पता नहीं है कि सीमेंट के लिए किस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं जलील हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि सर्दियों में काम पूरा मुकम्मल हो जाए।
साहब 1-2 दिन में हमें दे देंगे तो उस वक्त आपको लौटा देंगे। अगर उसे ने काम रुका तो मोहर्रम तक काम पूरा नहीं होगा।
अगर सीमेंट तुम्हें दे दी और उन्होंने न दी तो हमारा काम रुक जाएगा, है ऐसा कि नहीं, बताओ?
हाजी साहब हजरत अबुल फजल ऐसा नहीं होने देंगे।
इस वक्त तो खुद हुसैनी का काम सीमेंट की वजह से रुका हुआ है। इस तरह तो तुम रुकावट न बनो कि मेरा काम भी रुक जाए और ये मनसूबा वक्त पर मुकम्मल न हो। नहीं माफ करना, नहीं, मैं ये जुआ नहीं खेल सकता कि सीमेंट के आने न आने का इंतजार करूं और रोजाना 2-3 बार नजर करूं।
हाजी साहब आपकी नजर एक वादा था, हजरत अब्बास को वादा दिया था।
मैं अपने वादे पर कायम हूं, लेकिन क्या मुझे जवाब मिल गया है?
आपने किस्तों में जो यूरो परवीन बेगम के हिसाब में भेजा था कि उसको खुश कर सके, उसके बजाय अगर अपनी नजर उतारने की फिक्र करते तो शायद अपने दिल की मुराद पा जाते। हाजी साहब ये नजर है, कोई दुनियावी मामला नहीं है।
साफ साफ बात क्यों नहीं करते, हिचकिचाते क्यों हो? क्या तुम्हारी दुनिया में कानून का वजूद नहीं है? जेब को ऊपर उछालोगे तो नीचे गिरेगा, यकीनन यही कानून है। अगर एडवांस में नजर पूरी कर दो तो क्या वही जवाब आएगा जो मेरे दिल में है? फता ही मुझे बेवकूफ मत बनाओ। खुदा पैगंबर नजर नयाज के नाम पर इस इमारत के लिए तैयार ना करो।
नजर करते ही परवीन बेगम की खबर मिली थी या नहीं?
उसके मरने की खबर आई होती तो इससे बेहतर थी। नजर न्याज करते हो फिर जमीन व आसमान के कुल्लाबे मिलाते हो, तवहुमात में गोता जन होते हो, इल्म रमल इल्म नजूम का हिसाब किताब पता ही हर वक्त नजर न्याज की बातें। अरे कभी अक्ल की भी तो बात किया करो, मेहनत करो, सूझबूझ से काम लो, जान लगाओ।
ये क्या कह रही हो?
कौन है?
परवीन है। क्या हुआ?
जान।
एक सेकेंड रुको बेटा,
तुम जाओ, मैं उससे दो टोक बातें करना चाहता हूँ।
आप उनको बताएंगी या नहीं? एक ही मर्तबा बड़ी रकम भेज दे, फिर कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ वापस आ जाओ, फिर इतना दूंगा कि राजी हो जाओगी। उस गाने बजाने वाले लड़के को छोड़ दो और आ जाओ।
अगर ये साज बजाने वाला लड़का ना होता तो वो फूटी कोड़ी जो आपने भिजवाई थी और बहुत निजाबत दिखाई थी, तुम्हें कासे कदाई मेरे हाथ में होता। मामा आपने क्या उन्हें नहीं बताया? बाबा जान, क्या आपने नहीं कहा था कि सावर में एक दफ्तर मुझे और सीना को देंगे? अच्छा तो आप सिर्फ इतना दे दिए कि हम यहाँ एक रेस्टोरेंट खरीद लें, इस फलाकत से हम निजात पाए। मुझे फिर मीरास से भी कुछ नहीं लेना। पहले सहारा कर लीजिएगा, फिर मीरास में से हिस्सा दें।
तुम्हारे अब्बा वहा, खुदा रहमत करे उन पर, इस दुनिया में तो अब नहीं है। तैयार न हुए कि सीमेंट की कुछ बोरियां हुसैनिया अबुल फजल के लिए दे देते हैं, इस डर से कि टावर की तामीर में देर हो जाएगी। फिर तुम्हारे नाना के बाद वहाब ने तुम्हारे मामू फरशीद और माँ के साथ झगड़ा कर लिया विरासत के मामले में, दोनों में खेल शुरू हो गया। तुम्हारी माँ को वहां रेस्तरां खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और तुम्हारे मामू तुम्हारी माँ को बाप की मौत का जिम्मेदार समझते थे। फिर बैंक वाले सामने आ गए और पूरे टावर को नीलाम कर दिया। अभी तक उसी हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारे मामू ने उसी साल तासु और आशूरा में रकम खर्च की और इसी जगह दस्तरखान बिछवाया। उधर तुम्हारी माँ 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसकी जिंदगी दरहम बरहम हो गई। तुम्हारे नाना को टावर ले डूबा। दुनिया भी अजीब जगह है, कभी कभी लोग अक्ल के पीछे लठ लेकर पड़ जाते हैं और बुरी तरह मुंह की खाते हैं।